आशिका तृप्ति से मिलने के लिए आ गई थी। उसे यही लगा था कि अभिमन्यु के साथ मिलकर वो तृप्ति को अपने जाल में फंसा लेगी, और साथ ही ये सच्चाई भी सामने खुल जाएगी कि उसने किस तरह बचपन में आशिका को किडनैप करके उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया था। लेकिन आशिका की पूरी चाल उल्टी पड़ गई थी। तृप्ति पहले ही वहां पर आकाश के साथ मौजूद थे। वो इलाका भी आकाश का था। कॉल पर जब अभिमान को पता चला कि आशिका उस जगह पर तृप्ति से मिलने गई है, तो उसने आशिका को उस जगह से तुरंत निकलने के लिए कहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आकाश पहले ही तृप्ति के साथ आशिका के पास पहुंच गया था और उन्होंने आशिका को होस्टेज बना लिया था। अभिमान तुरंत उस जगह पर आने के लिए निकल गया था, जबकि आकाश भी आशिका को लेकर जाने के लिए तैयार था। वहां से निकलने से पहले उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और कहा, अब तुम लोग जा सकते हो। जेट में पहले से ही जरूरी सिक्योरिटी अवेलेबल है। अगले 5 मिनट में हम यहां से निकल जाएंगे। आकाश का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी तुरंत गाड़ी में बैठकर जाने लगे। वहीं तृप्ति आशिका से बात कर रही थी। तृप्ति आशिका का मजाक बना रही थी, क्योंकि उसके बारे में सारी सच्चाई जानते हुए भी आशिका उससे अकेले मिलने के लिए आई थी। आफ, सोचती हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी बेटी मुझे इतना प्यार करती है, तृप्ति ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए थे। वो जोर से हंसी और बोली, पर अफसोस, तुम गलत जगह अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रही हो। ये हमारी आखिरी मुलाकात है आशिका। आज के बाद हम दोनों कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, और यही सही मौका है जब मुझे तुम्हें सच बता देना चाहिए। आशिका को कुछ भी बताने से पहले तृप्ति ने आकाश की तरफ देखा। वो आंखों ही आंखों में आकाश से इजाजत मांग रही थी। आकाश ने गहरी सांस ली और घड़ी की तरफ इशारा करके कहा, 5 मिनट में जो कहानी सुनानी है सुना सकती हो, उससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं देने वाला हूँ। और ये 5 मिनट भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सच में ये तुम दोनों की आखिरी मुलाकात है। तृप्ति ने सिर हिलाया और फिर आशिका की तरफ देखा। वो कंधे उचकाते हुए बोली, तुम मेरी बेटी नहीं हो। अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं कितनी भी मुसीबत में क्यों ना होती, या फिर मेरी शादी कितनी भी गरीब आदमी से क्यों ना हो जाती, मैं तुम्हें हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करती। फिर चाहे तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपना नाम भी ना दिया होता, मुझे अपने खून से प्यार होता। आशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। जब से आशिका यज्ञ और आशुतोष से मिली थी, उसे सच का अंदाजा उसी वक्त से होना शुरू हो गया था, लेकिन तृप्ति के सामने वो बिल्कुल चुप थी। अपने असली माँ बाप का नाम नहीं जानना चाहोगी, तृप्ति ने पूछा, जिस पर आशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ये ठंडा बर्ताव देखकर तृप्ति ने मुंह बनाया और कहा, तुम्हारा बिहेवियर काफी ठंडा है, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। पूरे कॉलेज में वो आदमी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था, लेकिन ना जाने तुम्हारी माँ ने क्या जादू कर दिया जो उसका दिल पिघल गया, और वो सिर्फ उसी के साथ अच्छा बिहेव करता था। मैं आशुतोष सिंघानिया की बात कर रही हूँ आशिका, तुम आशुतोष और काजल की बेटी हो। क्या तुम्हें अपने नाम से पता नहीं चला जो उन दोनों के नाम को जोड़कर रखा गया था? मैंने बचपन में तुम्हें किडनैप किया, सोचा था मार दूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम पहाड़ी से गिरी और बच गई, तो सोचा कि जो सजा तुम्हारे माँ बाप को नहीं दे पाई वो उनकी बेटी को दूंगी, और तुम्हारे मरने का इल्जाम तुम्हारे ही पति अभिमान पर आया। अफसोस की बात है कि तुम उन सबकी आंखों के सामने हो और कोई तुम्हें नहीं पहचान पाया। वैसे गलती तुम्हारी भी है, तुम अपनी आंखों पर यहाँ आने के बाद लेंसेज लगाकर क्यों घूम रही हो? तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। तृप्ति उसे जो कहानी सुना रही थी वो आशिका के लिए नई नहीं थी। वो पहले ही अभिमान से सब सुन चुकी थी। सिर्फ तृप्ति ही नहीं, आशिका को भी हैरानी हो रही थी कि उसका सच जानने के बाद भी वो उससे मिलने क्यों आई थी। ऐसा नहीं था कि आशिका को तृप्ति से प्यार था या उसके साथ किसी तरह के इमोशंस जुड़े हुए थे। तृप्ति ने कभी उसे माँ का प्यार दिया ही नहीं था। आशिका कुछ कह पाती उससे पहले आकाश ने उसे पकड़कर खुद के पास खींचा और कहा, ठीक है, इसे जितना सच जानना था ये जान चुकी है। अब इसका तुमसे या यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। इसके सारे रिश्ते मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होने वाले हैं। तो ये किसकी बेटी है या इसके दिल में तुम्हारे लिए क्या इमोशंस हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अब से ये आप ही की अमानत है, तृप्ति ने जवाब दिया। आकाश के इशारा करने पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स जेट में से बाहर आए और आशिका को ले जाने लगे। वहीं आशिका इधर उधर देख रही थी। वो यही उम्मीद कर रही थी कि अभिमन्यु वहां आ जाए, क्योंकि सिर्फ वही उसकी हेल्प कर सकता था। दूसरी तरफ जब आकाश ने अपने सभी आदमियों को वापस भेजा और वे गाड़ी में जा रहे थे, तभी अभिमन्यु की नज़र उनके ऊपर पड़ी। उसे काफी अजीब एहसास हुआ। अभिमन्यु ने तुरंत पृथ्वी से कहा, ये इतने सारे आदमी कहाँ जा रहे हैं, और इस जगह पर अमूमन इतनी भीड़ होती नहीं है। हाँ, यही बात मुझे हैरान कर रही है। आई होप कि मिस आशिका किसी प्रॉब्लम में ना हो, पृथ्वी ने जवाब दिया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जल्दी लोकेशन पर पहुंचो, अभिमन्यु बेचैन आवाज में बोला। उसने तुरंत आशिका को कॉल लगाया लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इस पर अभिमन्यु को यकीन हो गया था कि तृप्ति ने जरूर किसी साजिश के तहत आशिका को बुलाया था और अब वो मुसीबत में है। पृथ्वी के तेज ड्राइव करने पर वे जल्द ही उस जगह पर पहुंच चुके थे और इसी वक्त सिंघानिया फैमिली भी वहां आई। जब वे लोग आशिका के पास पहुंचे तब आशिका आकाश के साथ जेट में बैठ चुकी थी। आशिका ने खुद को बचाने की कोशिश की थी लेकिन आकाश के हाथ में गन थी। आकाश आशिका को गन पॉइंट पर लेकर प्राइवेट जेट के गेट पर एक सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ा हुआ था। वहीं तृप्ति मुस्कुराते हुए उन्हें बाय कह रही थी। जब आशुतोष और काजल ने ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उनके चेहरे उलझन से भर गए थे। मिस्टर राजवंश ने कहा था कि वो हमारी बेटी को मिलवाने के लिए लेकर आने वाले हैं, फिर यहाँ पर ये लड़की और तृप्ति क्या कर रही हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अभिमन्यु की बातों में नहीं आना चाहिए। जरूर वो इस लड़की को हमारी बेटी साबित करने की कोशिश कर रहा है, काजल ने दांत पीसते हुए कहा। फिलहाल इस बारे में बात करने के बजाय इस पर डिस्कस करें कि आखिर आकाश उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहा है, उसने उसे गन पॉइंट पर क्यों ले रखा है, आशुतोष ने हैरानी भरे लहजे में कहा। उसे सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। वहीं तृप्ति खुश थी कि उसका आशिका नाम की मुसीबत से पीछा छूट चुका था और अब उसकी बेटी आराम से सिन्हानिया फैमिली में रह सकती थी। आज नहीं तो कल अभिमान भी उसे मिल ही जाना था। इस बीच अभिमन्यु और पृथ्वी वहां पर पहुंचे। जब उन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा तो पृथ्वी ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और प्राइवेट जेट की तरफ शूट करने की कोशिश की। गोली चलने की आवाज सुनकर तृप्ति भी सतर्क हो गई थी। वो दौड़कर वहां से जाने लगी पर अभिमन्यु ने उसे पकड़ लिया था। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, मिस्टर राजवंश, जहां तक मुझे पता है कि आप यहाँ आशिका को लेकर आने वाले थे और फिर यहाँ तो तृप्ति, उसकी बेटी और आकाश, सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, आशुतोष ने कहा। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव भी थे और ये सब देखकर उन्हें हैरानी भी हो रही थी। अभिमन्यु ने उनकी बात की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वो तुरंत पृथ्वी से बोला, पृथ्वी, हमें कुछ भी करके आशिका को यहाँ से जाने से रोकना होगा। अगर वो उसे दूर ले गया तो हम कभी आशिका को हमारे पास नहीं ला पाएंगे।
लेकिन सर, वो प्राइवेट जेट में है और बीतते हर पल के साथ वो हमसे दूर जा रहे हैं, हम उनका पीछा तक नहीं कर सकते हैं, पृथ्वी ने मायूसी से जवाब दिया। उसे बुरा लग रहा था कि आज वो अभिमन्यु के ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं कर पा रहा था। आकाश उनकी आंखों के सामने आशिका को दूर लेकर जा रहा था और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते वो प्राइवेट जेट उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। भले ही तृप्ति को खुशी हो रही हो या फिर काजल और आशुतोष के चेहरे पर इस वक्त कोई खास भाव ना हो, लेकिन अभिमन्यु को बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। उसने एक नज़र काजल और आशुतोष की तरफ देखा जो आशिका को जाते हुए इस तरह देख रहे थे जैसे कोई मुसीबत दूर चली गई हो, लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता थी कि अगले कुछ मिनटों में वे दोनों बुरी तरह पछताने वाले हैं। अभिमन्यु ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ बांध लीं। उसने तृप्ति की तरफ देखा और सर्द आवाज में कहा, तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया ना, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वो आशिका को लेकर कहाँ गया है, बताओ मुझे। वो मेरी बेटी है और मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एक आदमी के साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाती है। उसे लगा होगा कि अभिमान से ज्यादा अभिमान के डैड के पास ज्यादा पावर है तो वो उनके साथ चली गई, तृप्ति ने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो उसे इससे कोई फर्क न पड़ रहा हो। तृप्ति का जवाब सुनकर आशुतोष और काजल का चेहरा नफ़रत भरे भाव से भर चुका था। वहीं जैसे ही तृप्ति की बात खत्म हुई, पृथ्वी ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। सबसे पहले उसे अपनी बेटी कहना बंद करो, वो तुम्हारी बेटी नहीं है और ये तुम अच्छे से जानती हो, पृथ्वी ने उसे धमकाते हुए कहा। काजल और आशुतोष के सामने तृप्ति एक पल के लिए सकपका गई थी क्योंकि पृथ्वी सच बोल रहा था। वो जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो मेरी ही बेकी है, मैं आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी सबूत दिखा सकती हूँ। आपको यकीन ना हो तो आप मेरे घर पर जाकर मेरे पति और आसपास के पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं। आप अगर अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला और बकवास की तो मुझे तुम्हें शूट करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचना पड़ेगा, पृथ्वी ने ट्रिगर पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी है, अभिमन्यु भौहें उठाकर बोला। फिर शायद डीएनए रिपोर्ट झूठ बोल रही है जिसमें आशिका के ब्लड सैंपल्स मिस्टर सिंघानिया के साथ मैच हो रहे हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर काजल और आशुतोष के चेहरे का रंग उड़ गया था। आशुतोष ने जल्दी से अभिमन्यु के हाथ से पेपर्स लिए और उन्हें देखने लगा। वहीं तृप्ति बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। वो रोने का दिखावा करते हुए बोली, ठीक है मिस्टर राजवंश, मैं इतने सालों तक ये सब छुपाते हुए आ रही थी, अगर आपको सबके सामने रिवील करना है तो कोई बात नहीं, आई अग्री, आशिका आशुतोष की बेटी है लेकिन उसे मैंने ही पैदा किया था, आशुतोष ने जल्दी से कहा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं कभी तुम्हारे क्लोज नहीं आया था और वो मेरी बेटी कैसे हो सकती है, तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम उस रात नशे में थे, याद है ना उसी रात की तस्वीर देखकर काजल आपसे नाराज हो गई थी, तुमने उसे पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, तो बस मैं भी शांत रही,
मैंने तुम दोनों की लाइफ में पहले ही बहुत उथल पुथल मचा दी थी। मैंने यही सोचा कि अब मैं हमारी बेटी को लेकर दूर चली जाऊंगी। तृप्ति ने रोते हुए कहानी सुना दी थी जिस पर एक पल के लिए आसानी से कोई भी यकीन कर सकता था। काजल कुछ कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ये लगा था कि आज मैं अपनी बेटी से मिलने वाली हूँ और यहाँ तो कुछ और ही सच पता चल रहा है। तृप्ति ने बोलने की कोशिश की, तभी अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ इशारा किया। पृथ्वी ने तृप्ति के मुंह को कसकर दबा दिया था। फिर अभिमन्यु ने काजल और आशुतोष की तरफ रुख किया। मुझे पहले ही डाउट था कि तृप्ति इसी तरह की कोई कहानी सुनाएगी, इसलिए जब आप लोग उस दिन ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप में आए थे तब मैंने मिस्टर सिंघानिया का ब्लड सैंपल लेकर उनका भी आशिका के साथ ब्लड टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं आपको और भी सबूत दिखाने के लिए तैयार हूँ। आशिका उस दिन पहाड़ी से गिरी थी और उसका ट्रीटमेंट जहाँ हुआ था वहाँ के पूरे पेपर्स और बाकी सबूत मेरे पास हैं, और उस दिन तृप्ति उसके साथ मौजूद थी, इसके सबूत भी हैं। यकीन मानिए मिस्टर सिंघानिया, वही आपकी बेटी है, अभिमन्यु बोला और उसने एक फाइल आशुतोष के हाथ में पकड़ा दी। आशुतोष एक एक करके पन्ने बदल कर देख रहा था। सारे सबूत यही कह रहे थे कि आशिका उनकी बेटी है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उनका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था। सॉरी टू से मिस्टर राजवंश, लेकिन मुझे आपके सबूत भी झूठ लग रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि वो लड़की हमारी बेटी है, उसकी तो आंखें भी हमसे नहीं मिलती, आशुतोष ने ठंडे लहजे में कहा और फाइल वापस अभिमन्यु को पकड़ा दी। वो लेंसेज लगा कर रखती थी, इस वजह से शायद आप भी धोखा खा गए। एक मायूसी भरी आवाज वहां पर आई और उन सबने पलट कर देखा तो सामने अभिमान खड़ा हुआ था। अभिमान ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। उसने एक नजर आसमान की तरफ देखा जहां उसे दूर जाता हुआ एक प्राइवेट जेट दिखाई दे रहा था। एक बार फिर मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने खो दिया और तुम्हें रोक भी नहीं पाया, अभिमान ने आंखें बंद करके कहा। उन लोगों की बातों से उसे ये समझ आ गया था कि आशिका ही आशुतोष और काजल की बेटी है, और साथ ही ये भी कि अब तक आशिका अपनी आंखों में लेंसेज लगाकर क्यों रहती थी। शायद सच बाहर आते आते बहुत देर हो गई और आशिका उनसे दूर चली गई थी।